ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुतिः प्रणमामि हरि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः अङ्गश्यामलिं शटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दुवरं जड्ढञ्जागुटरोषितं पिदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम् दाम यं प्रभृतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नैमाम् शरणन्ति कहाँ गया उपदेशामृत के भक्ति के अनुकूल और भक्ति के प्रतिकूल विषयों का विचार कर रहे थे। उसमें प्रतिकूल सर्वे और अत्याहार प्रयास करते इसको क्या करने की बातें भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर जी के की व्याख्या से हम लोग देख रहे हैं पढ़ रहे थे। हम लोगों को इनको अक्षरशः पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि भक्ति की इच्छा है किंतु साधक दुर्बलता के कारण कर नहीं पाता है, न तो भक्ति के अनुकूल को ही सावधानी पूर्वक ग्रहण करता है, न प्रतिकूल को त्यागने की चेष्टा करता है। जो लोग चेष्टा करते हैं अनुकूल को ग्रहण और प्रतिकूल को दूर करने की, उनको भक्ति बहुत जल्दी हो जाती है। आज जो चेष्टा नहीं करते हैं वो इसी में बहुत दिन लगा लेते हैं, विशेष करके जानबूझ करके, जानते हैं किंतु जानबूझ करके भी इन प्रतिकूलों को यदि दूर करने की चेष्टा नहीं करते हैं तो वो अपराध हो जाता है, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए भक्ति से सदा के लिए वो दूर कर देता है, इसलिए इन चीज़ों को पालन करना चाहिए। अत्याहार प्रयास भक्ति प्रतिकूल चेष्टा प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह नियम अग्रह नियम अति अग्रह जनसंग और लौल्य असत मतों को ग्रहण करने की चेष्टा, ये सब को दूर करनी चाहिए। और भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करके भक्ति में ये विचार करना चाहिए, हम लोग सचमुच में हमारी भक्ति हो रही है या नहीं। फिर समय पर हम लोग उसका विचार करेंगे। केवल दूसरों को बतलाने के लिए नहीं, अपने जीवन में आचरण करने के लिए इन उपदेशों का पालन करना चाहिए। हमने कल कहा था अक्रूर के गोकुल में आने का प्रसंग और पुनः कृष्ण और राम को लेकर मथुरा में ले जाने का प्रसंग, कंस किस प्रकार से अनुचरों के साथ में मारा गया और फिर नंद बाबा कैसे लौटे, ये सबका भक्ति सिद्धांत मूलक विचार हम लोग पाठ करेंगे। इन लीलाओं में सिद्धांत विचार इत्यादि सभी कुछ आ जाते हैं, हमने पहले ही बतलाया है। कृष्ण ने शारदीय रास की और पांच अध्याय में इसका वर्णन किया गया, उसे तरह तरह के सिद्धांत आए हैं जिनमें प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन है। उत्तम भक्त लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं, साधारण लोगों के लिए संभव नहीं, उनकी कृपा से कोई समझ सकता है। इसके बाद में गोपियों का विरह जुगल गीत के रूप में प्रकट हुआ है, इसका भी वर्णन दिया गया। अरे कोई जाकर के देखो ना। इसके बाद में केसी वध और केसी और जुमासुर इत्यादि का वध हुआ। केसी के वध के पश्चात ही नारद ऋषि ब्रज में आए और कृष्ण का दर्शन किया और उनसे प्रार्थना की, प्रभो आप सब कुछ भूल के क्या गए हैं, ब्रजरस में सारी भगवत्ता को भी आप भूल गए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके भविष्य की लीलाओं का भी दर्शन करना चाहता हूं। आप स्वयं परब्रह्म है, असुरों को विनाश कर धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आप जगत में अवतीर्ण हुए हैं। करीब करीब सब असुरों का ब्रज में विनाश हो चुका है, किंतु अब भी पूर्व जन्म में जो लोग असुर थे वो लोग क्षत्रिय के रूप में आए हुए हैं। महाभारत के युद्ध में मैं ये दर्शन करना चाहता हूं ये वो सब लोग मारे गए और धर्म की प्रतिष्ठा हुई। इसके अतिरिक्त आप यहां से मथुरा में जाएंगे, आपके भक्त यहां पर हैं सब श्रेष्ठ, ये बात ठीक है, किंतु मथुरा वाले भी भक्त हैं। आपकी ये प्रतिज्ञा है जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, आपकी प्रतिज्ञा है जो भक्त जैसा हमें भजन करता है उसी रूप में उसके मैं फल प्रदान करता हूं। ब्रज के भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं यह ठीक है, किंतु द्वारका में और मथुरा के भी भक्त लोग हैं, वहां पर भी देवकी और वसुदेव कंस के द्वारा उत्पीड़ित हो रहे हैं, उनको भी रक्षा करनी है, कंस का भी उद्धार करना है और फिर द्वारका में आप जाएंगे, पौंडिक वसुदेव इत्यादि का वध है, स्वर्ग से पारिजात और सुधर्मा सभा लानी है, उसका नरकासुर का वध कर वहां के 16,000 महनीषियों से भी विशुद्ध वैदिक रीति से विवाह करना है, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि अस्तरानियों से भी विवाह करना है, उनके पुत्र होंगे और सभी लीलाएं हमको देखनी है, और सब बात कह करके भगवान की स्तुति की। भगवान बिहस पड़े, इसके मतलब वो उन्होंने स्वीकृति दी और तब वो चले गए। When Krishna played Ras Leela, it has been told in 5 chapters in Srimad Bhagavatam. And after that, Shankhachur, Vishvasur, Aristasur were killed by Krishna. And at last Kesi in Vrindavan, he was killed. At that time Narada came and prayed Krishna that you are Supreme Personality of Godhead. We have come to establish Yuga Dharma and to test all kinds of Russia. You have killed and the Asurs, demons, and you have established dharma. But yet something has to be done by you. We want to see your future pastimes in Mathura to kill Kamsa and to save Ugrasen and to save Devaki Vasudev. And after that, you will go to Dwarka and you will marry Ashtapatarani, Satyabhama Rukmini and others. And after that, you will go to Assam and kill Narkasur and marry 16,000. Rajkumaris, princes and others in Vedic Riti, and to kill Pandit Vasudev, Kaljavan, Jarasandha, and in Mahabharata Yuddha, so many demons, and to establish all this. So I want to see all your future pastimes. Though the associates of Braja are highest, but for this you cannot remain here for always. You will have to save the associates of and bhakts of Mathura and Dwarka. So I want that I can see all your pastimes. Krishna smiled, and thus he knew that, oh, now he has in this form that he will do all these things. And then he returned, Lord Gaya. Now, this adhyay mein अक्रूर का गोकुल गमन और राम कृष्ण का के द्वारा उनका सत्कार का वर्णन किया गया है। विशेष करके शंखचूर और अरिष्टासुर, अरिष्टासुर का नाम ही तो विषभासुर, इन दोनों में कुछ अंतर है। ये दोनों लीलाएं बासंती रात के समय में, होली के समय में हुई थी, करीब करीब। शंखचूर उनका कुबेर का अंचर था, कुबेर का अनुचर था, इसलिए कुबेर जी तो बड़े धनी हैं, तो उनका ये परिकार। और वो शंकर जी के वो भक्त हैं कुबेर, बल्कि कुबेर जी उनके परिकर हैं शंकर जी के। वो जब के यहाँ पर होली लीला हो रही थी, उसमें में बलदेव जी और सखा लोग सब कृष्ण के साथ में थे, दाम से दाम पशुधाम स्तो कृष्ण, सब जितने सखा थे मधुमंगल आदि सब सखा कृष्ण के साथ में थे। होली के दिन, होली के लिए एक महीना बसंत ऋतु में फाग खेलना, यहाँ तक कि भाभिया भी देवर के साथ में और सब लोग उसमें होली खेलते हैं। होली खेलना माने एक राग रंग है, आनंद का उत्स है। तो कृष्ण जी और ये सब खेल रहे थे, उधर सखियां भी सभी मिलकर कृष्ण और उनके सखाओं के साथ में बलदेव जी के साथ में होली खेल रहे थे। और उसी समय में शंखचूर आकर के गोपियों का हरण करने लगा, और गोपियों को जैसे भेड़ बकरी को हांकते हैं ऐसे हांक करके ले जाने लगा। और विशेष करके राजा त्यागी जी को तो पकड़ करके अपने कंधे पर बैठा लिया और भागने लगा। उस समय में वो लोग बिलबिलाने लगे। शंखचूर का तो एक ब्रज में आना बड़ा भारी कठिन है, नहीं आ सकता। ब्रज में जहाँ पर कि कृष्ण है, गोलोक वृंदावन से अभिन्न तत्व है, वहाँ पर असुरों का प्रवेश कभी संभव पर नहीं, सिद्ध लोगों का वो स्थान। किंतु जोग माया के कारण अघटन घटन पटी ऐसी शक्ति है, प्रकट ब्रज में लीला की सिद्धि के लिए प्रेम का रिन्यूअल करने के लिए ऐसा वो करती है। नित्य अप्रकट ब्रज में केवल अभिमान है इस चीज का, कोई अरिष्टासुर और ये सब कंस इत्यादि का रूप नहीं है, वहां पर उनकी क्रिया कोई भी नहीं है, वहां पर एक भाव मात्र है। केवल भाव है, किंतु भाव से भी काम होता है, किंतु इस जगत में केवल भाव से काम नहीं होता है, किंतु वहां पर होता है। यदि कोई किसी बात में आविष्ट हो जाए तो वहां पर भाव कार्यकारी होता है, आविष्ट नहीं होने से नहीं होता है। तो वहां पर ये सब चीजें नहीं है, किंतु भाव प्रधान है, भाव का कंस है, अभिमन्यु है और अवशक्ति जटिला कुटिला इत्यादि है। प्रकट ब्रज में उसकी मूर्ति बन करके योग माया के प्रभाव से उस लीला को और भी रसमयी बनाती हैं। तो ये अरिष्टासुर या शंखचूर वहां नहीं आ सकता, तभी योग माया के प्रभाव से योग माया उसको लाती है। वहां पर कृष्ण और बलदेव जी ने उनका पीछा किया और वो गोपियों को छोड़ करके भागा। कुछ देर में बलदेव जी ने गोपियों की रक्षा के लिए बलदेव जी को वहां रखा और अपने आप उसका पीछा किया और उसे पकड़कर उसे मारा, और मार करके उसके शंखचूर चूर में मणि थी और उस मणि को निकाल लिया। और निकालकर सोचा जाइए तो राधिका जी के पास में जानी चाहिए, किंतु यहाँ पर तो सभी गोपियाँ हैं, यदि उनको अकेले दें तो वो सभी बड़ी दुखी होंगी, इसलिए उन्होंने अपने आप नहीं दिया, कुछ सोच करके बलदेव जी के हाथों में समर्पण कर दिया। ये शंखचूर को मैंने मारा, उसके मस्तक से ये मणि निकली, बहुत ही अद्भुत विलक्षण थी। बलदेव जी ने कहा इसका देने का आशय कुछ है, वो समझ गए ये वो खुद नहीं दे सकते, हमको किसी प्रकार से छल से इस चीज को श्रीमती जी के पास में पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने उसको किसी तरह से ललिता जी के हाथों से और राधा जी के पास में धारण करने के लिए दिया। बलदेव जी ने दिया, ये सब चीज सब लोगों ने जाना, किंतु कोई को कुछ कहने का नहीं है। कृष्ण कहने से होता, किंतु बलदेव जी के कहने से उन्होंने जिसको जैसा उचित समझा उसको दिया, इसलिए किसी ने कुछ आपत्ति नहीं। ये तो शंखचूर की होली लीला पर हुई बसंत ऋतु में, और वृषभासुर का है कार्तिक के महीने में अष्टमी के दिन, शुक्ल ना कौन कृष्णाष्टमी के दिन में अरिष्टासुर को ही वो कहते हैं वृषभासुर, वृष माने बैल, बैल का रूप धारण करके उत्पात करने लगा। उस समय कृष्ण ने उसे मार करके उसका उद्धार किया। तो इसलिए कार्तिक महीने में ही राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य है, प्रकट हुए, उनको मारा, और मारने पर गोपियों ने कृष्ण को स्पर्श नहीं किया, कहा जी आप अपवित्र हो गए हैं, गो हत्या का पाप है। तब कृष्ण का जी कैसे मैं पवित्र हो सकता हूं, तो उन्होंने कहा आप समस्त पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं उन सब प्रधान तीर्थों में स्नान करके आइए। कृष्ण ने सबका आवाहन किया, सब लोग आ गए, जल का रूप धारण किया, और कृष्ण ने अपनी एड़ी से वो गड्ढा किया, ऐसे मारा तो कृष्ण जैसे बकर हैं वैसे ही चारों तरफ से वो गड्ढा हो गया, उसमें पानी नहीं निकला। तो फिर ये लोग कृष्ण से प्रार्थना करके जल का रूप धारण करके उसमें प्रविष्ट हुए, उसमें कृष्ण ने स्नान किया, फिर भी गोपियां उनको स्पर्श नहीं कर रही। राधिका जी ने अपने नाखूनों से पैर के वृद्धांगुली की नाखूनों से उन्होंने कुछ मिट्टी हटा दिया, बहुत गंभीर एक सरोवर पैदा हुआ, किंतु पानी नहीं। उन लोगों ने प्रार्थना की हमारे जल से इसको पूर्ण कर लीजिए, उन्होंने नहीं माना, फिर उन्होंने सत्याग्रह किया, ये लोग मानसी गंगा से पानी लाएंगे। लोग सत्याग्रह करने पर फिर राधिका जी ने इनको आदेश दिया कि तुम लोग पानी भर लो। मिनटों में छेद हो गया दोनों में, संगम स्थल में और श्याम कुंड का पानी। क्या तात्पर्य, तात्पर्य है क्या है? कृष्ण ही राधा जी हुए, ये दोनों अभिन्न हैं। ऊपर से बपु दो है, किंतु सरोवर का पानी ही तो सरोवर है, दोनों में एक ही पानी है ना। श्याम कुंड का पानी उसमें भर गया तो क्या हुआ, श्याम ही उसमें प्रकट हुए, इसलिए राधा और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। तो ये हुआ कार्तिक के महीने में, कार्तिक ये कार्तिक महीने में हुआ तो जैसे इसके बाद में कृष्ण अब मथुरा में आएंगे, उस समय में कंस ने देखा कि मथुरा में कृष्ण और बलदेव को लाना है, मैं कृष्ण बलदेव को ब्रज से बाहर में नहीं मार सकता, जो मारने के लिए जाता वहीं रह जाता है, संवाद देने के लिए भी नहीं आता, इसलिए किसी प्रकार से छल बल कल से यदि कृष्ण बलदेव को मथुरा में लाया जाए तो हम सभी लोग मिलकर आसानी से उसका वध कर सकते हैं और हमारा यह भय दूर हो जाएगा। वो आकाशवाणी भी मिथ्या हो जाएगी। इसलिए वसुदेव और देवकी पर घोर अत्याचार करने लगा, और साथ ही साथ में देखा जी अक्रूर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे राज्य में रहते हैं, हमारे लिए भी, हमको भी, हमारे प्रिय बनने के लिए भी हमारे अनुसार में काम करता है, किंतु है भगवत भक्त वो, और कृष्ण के प्रति भी उसकी बड़ी प्रीति है, यह काम उसी के द्वारा हो सकता है। इसलिए अक्रूर को वो बुलाया। कंस वांटेड टू किल कृष्ण एंड बलदेव बट ही वॉज अनेबल टू किल टू ब्रदर्स इन ब्रज, सो ही वांटेड टू कॉल कृष्ण एंड बलदेव इन मथुरा सो दैट विथ ऑल हिज एसोसिएट्स of Kans, they can kill Krishna and Baldev easily. So he called Akrur and they discussed this matter. Akrur can call Krishna because he is so dear to me also and to Krishna also. Akrur api tang tang ratri matapodyang maha mati ushitva रथम आस्थाय सजेउ नंद गोकुलम। जब कंस ने अक्रूर को बुलाकर परामर्श किया और उनको परामर्श दिया कि छल बल कल से कृष्ण को यहां लाया जाए, कृष्ण कैसे आएंगे इसके लिए उन्होंने एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया। धनुर्यज्ञ यही रंगेश्वर महादेव, यही तो बड़ी विस्तृत भूमि थी और उसमें अखाड़ा बनाया गया लड़ने के लिए, कुश्ती के लिए, दंगल के लिए। बड़े बड़े वीर बुलाए गए दक्षिण भारत से और केसी में कौन चारुण मुष्टि हल मोसल इत्यादि बड़े बड़े और उच्च सिंहासन बनाया गया जिस पर कि कंस बैठेगा। और ये प्लान किया कि दंगल और कुश्ती का नाम सुनते ही कृष्ण और बलदेव जरूर आएंगे, ये प्रजाएं हमारी हैं, कंस को प्रसन्न करना हम लोगों का कर्तव्य है, ये जाकर के नंद को समझाना और छल से उन दोनों को ले आना। जब विनाश का अवसर होता है तो ऐसे ही दुर्बुद्धि होती है। विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश काल में विपरीत बुद्धि होती है, ऐसे ही इसकी विपरीत बुद्धि हुई। अक्रूर को स्वयं काल को बुलाने के लिए भेज रहा है। कहा जी चाचा जी आपके अतिरिक्त यह काम दूसरों से संभव नहीं है, आप कहेंगे जैसे मेरे भांजे हैं वो दोनों, मेरे बड़े प्रिय हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं और यहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है, इसमें बराबरों की कुश्ती होगी और शंकर को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाएगी और यहाँ पर देखने के लिए तमाशे तरह तरह के होंगे, इसलिए उनको बुला लें। उस समय में अक्रूरो अपि अक्रूर भी क्यों, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी ये सब देंगे। अष्टाबिन से व्यधात कृष्णो यथा अक्रूरो मनोरथान तथा तान पुरेयामास तदाति सो अकरो। कंस फाल्गुन कृष्णैक एकादश्यां कृतैव मंत्रणा। कंस ने फाल्गुन महीने के कृष्ण एकादशी के दिन ये मंत्रणा किया। प्रेष्य केशुन अक्रूरम, अच्छा एकादशी के दिन, किंतु दशमी के दिन उसका वध है। तो उनको आने जाने में देरी हुई होगी। प्रेष्य केशिन